Cambridge International Examinations. International General Certificate of Secondary Education. March 2015 Examination in Hindi as a Second Language. Paper 2. Listening Comprehension. Turn over now.
अभ्यास एक, प्रश्न एक से छः. प्रश्न एक से छः के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा.
संवाद एक.
हेलो गिरीश, मैं सीमा बोल रही हूँ. पहचाना? अरे भाई, वही तानपुरा बजाने वाली सीमा. ग्वालियर में हम साथ साथ पढ़ते थे. तुम तो विलायत जाकर भूल गए, लेकिन तुम्हारी बहन से तुम्हारा अता पता मिल गया. खैर सुनो, मैं दो दिनों के लिए लंदन आई हूँ और यहाँ YMCA में ठहरी हूँ, इसलिए अगर मिलने का समय निकाल सको तो अच्छा रहेगा. आज दोपहर 12 बजे तक मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में रहूंगी और शाम को चाहो तो YMCA में भी मिल सकते हो.
संवाद दो.
भाई साहब, क्या दालचीनी रखते हैं आप?
क्यों नहीं बहन जी, हुकुम कीजिए. कौन सी दाल चाहिए आपको? चना, मूंग, मसूर, सब तरह की दालें आपके सामने लगी हैं. वैसे चीनियां भी हैं, कौन सी चाहिए?
आप समझे नहीं भाई साहब, दाल और चीनी तो मुझे भी नजर आ रही हैं, लेकिन मुझे दाल चीनी चाहिए. मसाला दाल चीनी जो जायके के लिए डाली जाती है.
ओ, दाल चीनी. उसके लिए तो आपको पंसारी की दुकान में जाना होगा. वहां सामने की गली में दुकान है.
संवाद तीन.
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने अच्छे प्रदर्शन के लिए जूझ रहे फिलिप ह्यूज की वकालत करते हुए कहा है कि वह देश के सर्वश्रेष्ठ युवा बल्लेबाज हैं और उन्हें समर्थन की जरूरत है. 24 साल के ह्यूज ने इंग्लैंड में एशेज टेस्ट श्रृंखला की पहली पारी में 81 रन बनाए थे, लेकिन अगली तीन पारियों में नाकाम रहने के बाद उन्हें टेस्ट श्रृंखला में दोबारा मौका नहीं दिया गया. पिछली एशेज श्रृंखलाओं में ये तीसरा मौका था जब उन्हें टीम से बाहर किया गया.
संवाद चार.
नमस्कार, कहिए क्या सेवा करूं?
जी नमस्कार, सिंगापुर डॉलर का क्या भाव चल रहा है इस समय?
आप खरीदना चाहती हैं या बेचना?
जी मुझे तो डॉलरों के बदले कुछ रुपये चाहिए.
तब 49.50 रुपये का भाव लगेगा. पहले अपना पासपोर्ट दिखाइए.
जी ये लीजिए और $100 के रुपये दे दीजिए.
संवाद पांच.
नमस्कार, भारती एयरटेल आपका स्वागत करती है. अपनी कॉल का जल्दी से जल्दी और संतोषजनक उत्तर पाने के लिए अगले 5 विकल्पों को ध्यान से सुनकर सही विकल्प वाला बटन दबाएं. यदि आप अपने बकाया मिनटों के बारे में जानना चाहते हैं तो 1 दबाएं. आप अपने सिम कार्ड को रिचार्ज कराना चाहते हैं तो 2 दबाएं. यदि आप अपनी सुविधा में बढ़ोत्तरी कराना चाहते हैं तो 3 दबाएं. आप सेवा में किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत करना चाहते हैं तो 4 दबाएं. और यदि आप हमारे प्रतिनिधि से कोई और बात करना चाहते हैं तो 5 दबाएं.
संवाद 6।
कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालिए।
बस मैसूरू तक जा रहे हैं ऑफिसर। क्यों, कोई गड़बड़ है क्या?
यही तो मैं आपसे जानना चाहती थी। पीछे बूट में क्या है?
कुछ नहीं, बस एक सूटकेस और कुछ फुटकर सामान। देखना चाहेंगे?
नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अपनी पीछे की बत्ती चेक नहीं करते आप?
जी, कल ही तो चेक कराई थी। क्यों, खराब है क्या?
इसीलिए तो आपको रोका गया है। आप जानते हैं यह कितना खतरनाक है।
माफ कीजिए ऑफिसर, गलती हो गई। अगले स्टेशन पर ठीक करवा लेंगे।
अभ्यास एक के इन संवादों को अब आप फिर से सुनेंगे।
संवाद एक।
हेलो गिरीश, मैं सीमा बोल रही हूँ। पहचाना? अरे भाई, वही तानपुरा बजाने वाली सीमा। ग्वालियर में हम साथ साथ पढ़ते थे। तुम तो विलायत जाकर भूल गए, लेकिन तुम्हारी बहन से तुम्हारा अता पता मिल गया। खैर सुनो, मैं 2 दिनों के लिए लंदन आई हूँ और यहाँ YMCA में ठहरी हूँ, इसलिए अगर मिलने का समय निकाल सको तो अच्छा रहेगा। आज दोपहर 12 बजे तक मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में रहूंगी और शाम को चाहो तो YMCA में भी मिल सकते हो।
संवाद दो।
भाई साहब, क्या दालचीनी रखते हैं आप?
क्यों नहीं बहन जी, हुक्म कीजिए। कौन सी दाल चाहिए आपको? चना, मूंग, मसूर, सब तरह की दालें आपके सामने लगी हैं। वैसे चीनिया भी हैं, कौन सी चाहिए?
आप समझे नहीं भाई साहब, दाल और चीनी तो मुझे भी नजर आ रही हैं, लेकिन मुझे दालचीनी चाहिए, मसाला दालचीनी जो जायके के लिए डाली जाती है।
ओ, दालचीनी। उसके लिए तो आपको पंसारी की दुकान में जाना होगा, वहां सामने की गली में दुकान है।
संवाद 3।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने अच्छे प्रदर्शन के लिए जूझ रहे फिलिप ह्यूज की वकालत करते हुए कहा है कि वह देश के सर्वश्रेष्ठ युवा बल्लेबाज हैं और उन्हें समर्थन की जरूरत है। 24 साल के ह्यूज ने इंग्लैंड में एशेज टेस्ट श्रृंखला की पहली पारी में 81 रन बनाए थे, लेकिन अगली 3 पारियों में नाकाम रहने के बाद उन्हें टेस्ट श्रृंखला में दोबारा मौका नहीं दिया गया। पिछली एशेज श्रृंखलाओं में ये 3रा मौका था जब उन्हें टीम से बाहर किया गया।
संवाद 4।
नमस्कार, कहिए क्या सेवा करूं?
जी नमस्कार, सिंगापुर डॉलर का क्या भाव चल रहा है इस समय?
आप खरीदना चाहती हैं या बेचना?
जी मुझे तो डॉलरों के बदले कुछ रुपये चाहिए।
तब 49.50 रुपये का भाव लगेगा। पहले अपना पासपोर्ट दिखाइए।
जी ये लीजिए और $100 के रुपये दे दीजिए।
संवाद 5।
नमस्कार, भारतीय एयरटेल आपका स्वागत करती है। अपनी कॉल का जल्दी से जल्दी और संतोषजनक उत्तर पाने के लिए अगले 5 विकल्पों को ध्यान से सुनकर सही विकल्प वाला बटन दबाएं। यदि आप अपने बकाया मिनटों के बारे में जानना चाहते हैं तो 1 दबाएं। आप अपने सिम कार्ड को रिचार्ज कराना चाहते हैं तो 2 दबाएं। यदि आप अपनी सुविधा में बढ़ोतरी कराना चाहते हैं तो 3 दबाएं। आप सेवा में किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत करना चाहते हैं तो 4 दबाएं। और यदि आप हमारे प्रतिनिधि से कोई और बात करना चाहते हैं तो 5 दबाएं।
संवाद 6।
कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालिए।
बस मैसूरू तक जा रहे हैं ऑफिसर। क्यों, कोई गड़बड़ है क्या?
यही तो मैं आपसे जानना चाहती थी। पीछे बूट में क्या है?
कुछ नहीं, बस एक सूटकेस और कुछ फुटकर सामान। देखना चाहेंगे?
नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अपनी पीछे की बत्ती चेक नहीं करते आप?
जी, कल ही तो चेक कराई थी। क्यों, खराब है क्या?
इसीलिए तो आपको रोका गया है। आप जानते हैं यह कितना खतरनाक है।
माफ कीजिए ऑफिसर, गलती हो गई। अगले स्टेशन पर ठीक करवा लेंगे।
यह अभ्यास एक का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास 2 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 2 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 2, प्रश्न 7। राजपुताना शिल्प और वास्तुकला के विशेषज्ञ रामविलास लोधा से सुरभि की संवाददाता मंजुल सहाय की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों को भरिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
रामविलास लोधा जी, सुरभि के पाठकों की ओर से आपका स्वागत है।
धन्यवाद मंजुल जी।
लोधा जी, पहले तो यह बताइए कि आजकल आपका काम कहाँ चल रहा है?
जी, बुंदेलखंड की प्राचीन राजधानी ओरछा में। वहाँ बुंदेला वास्तुकला के कुछ दुर्लभ नमूनों का संरक्षण कर रहे हैं।
ओरछा तो झांसी के पास पड़ता है ना?
जी हाँ, वही ओरछा जिसे 16वीं सदी में बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप जी ने बसाया था।
ओरछा की तो छतरियां बहुत प्रसिद्ध हैं, पर यह बताइए कि ये छतरियां बनाई क्यों जाती हैं? इनका महत्व क्या है?
मंजुल जी, छतरियां एक प्रकार के कलात्मक मकबरे या स्मारक हैं जिन्हें राजा महाराजा लोग अपने पूर्वजों, प्रियजनों और शूरवीरों की याद में बनाते थे।
यानी कि उनकी समाधियां हैं?
नहीं, समाधियां नहीं, केवल स्मारक हैं। समाधि तो उसे कहते हैं जहां किसी को दफनाया गया हो। छतरियों के नीचे किसी को दफनाया नहीं जाता।
वैसे भी हिंदू राजा महाराजाओं को दफनाया नहीं जाता, दाह संस्कार किया जाता है।
जी हाँ, एक खास बात और है। छतरियों को आम तौर पर सरोवरों के किनारे, ऊंची जगहों पर या फिर उद्यानों में बनाया जाता है ताकि लोग इनमें विश्राम कर सकें और जिनकी याद में ये छतरियां बनी हैं उन्हें याद कर सकें।
लोधा जी, छतरियां मूलतः इस्लामी वास्तुकला की देन है या हिंदू वास्तुकला की?
नहीं, एक तरह का संगम है। इनके छतरी नुमा गुंबदों पर इस्लामी वास्तुकला की छाप मिलती है, जबकि इनके झरोखों और नक्काशे पर हिंदू वास्तुकला की।
इसके अलावा आंचलिक प्रभाव भी होंगे?
बेशक, जैसे ओरछा की छतरियां अपनी वास्तुकला और शिल्प में राजस्थान की छतरियों से एकदम भिन्न हैं। इनमें एक वर्गाकार चबूतरे पर एक की बजाय 5 गुंबद बने होते हैं, बीच में प्रधान गुंबद और चारों कोनों पर 4 छोटे गुंबद। प्रधान गुंबद मस्जिदों के गुंबद की तरह गोल न होकर मंदिरों के शिखरों की तरह नुकीला होता है और मूर्तियों व झरोखों से सजा होता है। इसलिए दूर से देखने में बुंदेली छतरियां तिमंजिला महलों जैसी लगती हैं।
अरे वाह, ओरछा में ऐसी कितनी छतरियां हैं और कौन सी सबसे सुंदर लगती है?
मंजुल जी, ओरछा में बेतवा के किनारे कुल 15 छतरियां हैं। वैसे सभी बहुत सुंदर हैं, लेकिन पत्थर पर किए गए काम और गुंबदों के अनूठे आकारों की दृष्टि से महाराजा वीर सिंह देव की छतरी सबसे सुंदर है।
और राजस्थान की छतरियों में कौन सी छतरी आपको बेजोड़ लगती है?
ये तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न है मंजुल जी। राजस्थान के तो हर छोटे बड़े शहर में छतरियां हैं। उदयपुर की झीलों में छतरियां हैं, जयपुर और बूंदी में छतरियों के पूरे बाग हैं। फिर भी मेरे विचार में बूंदी के देवा सिंह जी द्वारा बनाई गई 84 खंभों वाली छतरी सबसे अनूठी है।
लेकिन किस तरह से?
पहली बात तो ये है कि ये छतरी किसी व्यक्ति की याद में नहीं, बल्कि भगवान शिव की पूजा के लिए बनाई गई है, इसलिए इसके बीचों बीच एक शिवलिंग बना है। दूसरी बात यह है कि इसके 84 खंभों और छत पर की गई कारीगरी बेजोड़ है।
लोधा जी, छतरियों पर रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। अभ्यास दो की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे।
रामविलास लोधा जी, सुरभि के पाठकों की ओर से आपका स्वागत है।
धन्यवाद मंजुल जी।
लोधा जी, पहले तो यह बताइए कि आजकल आपका काम कहाँ चल रहा है?
जी, बुंदेलखंड की प्राचीन राजधानी ओरछा में। वहाँ बुंदेला वास्तुकला के कुछ दुर्लभ नमूनों का संरक्षण कर रहे हैं।
ओरछा तो झांसी के पास पड़ता है ना?
जी हाँ, वही ओरछा जिसे 16वीं सदी में बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप जी ने बसाया था।
ओरछा की तो छतरियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, पर यह बताइए कि ये छतरियाँ बनाई क्यों जाती हैं? इनका महत्व क्या है?
मंजुल जी, छतरियाँ एक प्रकार के कलात्मक मकबरे या स्मारक हैं, जिन्हें राजा महाराजा लोग अपने पूर्वजों, प्रियजनों और शूरवीरों की याद में बनाते थे।
यानी कि उनकी समाधियां हैं?
नहीं, समाधियां नहीं, केवल स्मारक हैं। समाधि तो उसे कहते हैं जहां किसी को दफनाया गया हो। छतरियों के नीचे किसी को दफनाया नहीं जाता।
वैसे भी हिंदू राजा महाराजाओं को दफनाया नहीं जाता, दाह संस्कार किया जाता है।
जी हाँ, एक खास बात और है। छतरियों को आम तौर पर सरोवरों के किनारे, ऊंची जगहों पर या फिर उद्यानों में बनाया जाता है, ताकि लोग इनमें विश्राम कर सकें और जिनकी याद में ये छतरियां बनी हैं उन्हें याद कर सकें।
लोधा जी, छतरियां मूलतः इस्लामी वास्तुकला की देन है या हिंदू वास्तुकला की?
नहीं, एक तरह का संगम है। इनके छतरी नुमा गुंबदों पर इस्लामी वास्तुकला की छाप मिलती है, जबकि इनके झरोखों और नक्काशे पर हिंदू वास्तुकला की।
इसके अलावा आंचलिक प्रभाव भी होंगे?
बेशक, जैसे ओरछा की छतरियां अपनी वास्तुकला और शिल्प में राजस्थान की छतरियों से एकदम भिन्न हैं। इनमें एक वर्गाकार चबूतरे पर एक की बजाय 5 गुंबद बने होते हैं, बीच में प्रधान गुंबद और चारों कोनों पर 4 छोटे गुंबद। प्रधान गुंबद मस्जिदों के गुंबद की तरह गोल न होकर मंदिरों के शिखरों की तरह नुकीला होता है और मूर्तियों व झरोखों से सजा होता है, इसलिए दूर से देखने में बुंदेली छतरियां तिमंजिला महलों जैसी लगती हैं।
अरे वाह, ओरछा में ऐसी कितनी छतरियां हैं और कौन सी सबसे सुंदर लगती है?
मंजुल जी, ओरछा में बेतवा के किनारे कुल 15 छतरियां हैं। वैसे सभी बहुत सुंदर हैं, लेकिन पत्थर पर किए गए काम और गुंबदों के अनूठे आकारों की दृष्टि से महाराजा वीर सिंह देव की छतरी सबसे सुंदर है।
और राजस्थान की छतरियों में कौन सी छतरी आपको बेजोड़ लगती है?
ये तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न है मंजुल जी। राजस्थान के तो हर छोटे बड़े शहर में छतरियां हैं। उदयपुर की झीलों में छतरियां हैं, जयपुर और बूंदी में छतरियों के पूरे बाग हैं। फिर भी मेरे विचार में बूंदी के देवा सिंह जी द्वारा बनाई गई 84 खंभों वाली छतरी सबसे अनूठी है।
लेकिन किस तरह से?
पहली बात तो ये है कि ये छतरी किसी व्यक्ति की याद में नहीं बल्कि भगवान शिव की पूजा के लिए बनाई गई है, इसलिए इसके बीचों बीच एक शिवलिंग बना है। दूसरी बात यह है कि इसके 84 खंभों और छत पर की गई कारीगरी बेजोड़ है।
लोधा जी, छतरियों पर रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। अभ्यास 2 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 3 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 3 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 3, प्रश्न 8 से 13। हिंदी कथाकार और समालोचक डॉक्टर रेवती सहाय के साथ गल्प के संवाददाता शंभू मित्र की बातचीत को ध्यान से सुनिए और दिए गए प्रत्येक कथन को पढ़कर बताइए कि कथन सही है या गलत। अपना उत्तर उपयुक्त खाने में सही का निशान लगाकर दीजिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
डॉक्टर रेवती सहाय, आज की साहित्य चर्चा में आपका स्वागत है।
धन्यवाद शंभू जी।
रेवती जी, आपने अपना शोध पत्र हिंदी के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद पर लिखा था, तो क्यों न आज की चर्चा में उन्हीं पर बात की जाए?
शंभू जी, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि चर्चा उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी पर हो।
अच्छा, देखिए, अभी आपने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा। पहली बात तो प्रेमचंद भी उनका अपना नाम नहीं था, ऊपर से उपन्यास सम्राट की यह उपाधि, क्या आप बता सकती हैं कि यह नाम और उपाधि उनके साथ कब और कैसे जुड़े?
शंभू जी, प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय था, लेकिन उर्दू में लिखने के लिए वे नवाब राय नाम का प्रयोग करते थे। हुआ ऐसा कि उनके उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन की सारी प्रतियां तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लीं। अंग्रेजी हुकूमत के डंडे से बचने के लिए उर्दू अखबार जमाना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम ने सुझाव दिया कि वे अपना उर्दू का लेखकीय नाम नवाब राय की जगह प्रेमचंद रख लें। यह नाम उन्हें इतना भाया कि वे धनपत राय और नवाब राय से प्रेमचंद हो गए।
और फिर प्रेमचंद से उपन्यास सम्राट प्रेमचंद बनने की कहानी क्या है?
यह कहानी और भी दिलचस्प है। ऐसा था कि प्रेमचंद जी की रचनाएं छापने वाली हिंदी पुस्तक एजेंसी की एक प्रेस कोलकाता में हुआ करती थी, जिसका नाम वणिक प्रेस था। इसके प्रकाशक थे महावीर प्रसाद पोद्दार। वे प्रेमचंद की रचनाएं बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र जी को पढ़ने के लिए दिया करते थे। एक दिन पोद्दार जी शरद बाबू से मिलने उनके घर पर गए। उन्होंने देखा कि शरद बाबू प्रेमचंद का कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं। उत्सुकतावश पोद्दार जी ने उसे उठाया और देखा कि उस उपन्यास के एक पृष्ठ पर शरद बाबू ने उपन्यास सम्राट लिख रखा है। शरद बाबू की इस पहल पर ही पोद्दार जी ने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट प्रेमचंद लिखना शुरू कर दिया। इस प्रकार वे प्रेमचंद से उपन्यास सम्राट प्रेमचंद हो गए।
और प्रेमचंद से वे मुंशी प्रेमचंद कैसे बने? अध्यापक होने की वजह से या कायस्थ जाति के होने की वजह से?
नहीं, शायद ये दोनों ही वजहें नहीं थीं। यह सही है कि उस जमाने में अध्यापकों को प्रायः मुंशी कहकर पुकारा जाता था। यह भी सही है कि मुंशी शब्द सम्मान सूचक था और कायस्थों के नाम से पहले सम्मान के रूप में मुंशी शब्द लगा दिया जाता था। लेकिन प्रेमचंद जी के पुत्र और प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय बताते हैं कि प्रेमचंद जी ने स्वयं अपने नाम के आगे मुंशी शब्द कभी नहीं लगाया। यही नहीं, प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी ने भी अपनी पुस्तक प्रेमचंद घर में लिखते हुए प्रेमचंद जी के लिए कहीं भी मुंशी शब्द का प्रयोग नहीं किया।
प्रेमचंद जी के प्रकाशकों ने तो उनकी कृतियों पर कहीं न कहीं उनके नाम के आगे मुंशी शब्द लगाया होगा?
नहीं, किसी भी प्रकाशक ने ऐसा नहीं किया है।
तब फिर मुंशी शब्द उनके नाम के आगे जुड़ा कैसे?
बात ऐसी है कि हंस नामक पत्रिका में प्रेमचंद जी के सह संपादक कन्हैयालाल मुंशी हुआ करते थे। लगता है कि उनका उपनाम मुंशी ही छपते छपते प्रेमचंद जी के साथ जुड़ गया, क्योंकि हंस की कुछ पुरानी प्रतियों में संपादक के नामों की जगह कन्हैयालाल मुंशी के नाम को छूटा करते हुए केवल मुंशी और उसके बाद एक अर्धविराम लगाकर प्रेमचंद जी का नाम छापा जाता था। लगता है धीरे धीरे लोग उस अर्धविराम को भूल गए और प्रेमचंद को ही मुंशी प्रेमचंद लिखने लगे।
रेवती जी, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के नाम की रोचक कहानी सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद शंभू जी।
अभ्यास 3 की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। डॉक्टर रेवती सहाय, आज की साहित्य चर्चा में आपका स्वागत है।
धन्यवाद शंभू जी।
रेवती जी, आपने अपना शोध पत्र हिंदी के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद पर लिखा था, तो क्यों न आज की चर्चा में उन्हीं पर बात की जाए?
शंभू जी, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि चर्चा उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी पर हो।
अच्छा, देखिए, अभी अभी आपने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा। पहली बात तो प्रेमचंद भी उनका अपना नाम नहीं था, ऊपर से उपन्यास सम्राट की यह उपाधि, क्या आप बता सकती हैं कि यह नाम और उपाधि उनके साथ कब और कैसे जुड़े?
शंभू जी, प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय था, लेकिन उर्दू में लिखने के लिए वे नवाब राय नाम का प्रयोग करते थे। हुआ ऐसा कि उनके उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन की सारी प्रतियां तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लीं। अंग्रेजी हुकूमत के डंडे से बचने के लिए उर्दू अखबार जमाना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम ने सुझाव दिया कि वे अपना उर्दू का लेखकीय नाम नवाब राय की जगह प्रेमचंद रख लें। यह नाम उन्हें इतना भाया कि वे धनपत राय और नवाब राय से प्रेमचंद हो गए।
और फिर प्रेमचंद से उपन्यास सम्राट प्रेमचंद बनने की कहानी क्या है?
यह कहानी और भी दिलचस्प है। ऐसा था कि प्रेमचंद जी की रचनाएं छापने वाली हिंदी पुस्तक एजेंसी की एक प्रेस कोलकाता में हुआ करती थी, जिसका नाम वणिक प्रेस था। इसके प्रकाशक थे महावीर प्रसाद पोद्दार। वे प्रेमचंद की रचनाएं बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र जी को पढ़ने के लिए दिया करते थे। एक दिन पोद्दार जी शरद बाबू से मिलने उनके घर पर गए। उन्होंने देखा कि शरद बाबू प्रेमचंद का कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं। उत्सुकतावश पोद्दार जी ने उसे उठाया और देखा कि उस उपन्यास के एक पृष्ठ पर शरद बाबू ने उपन्यास सम्राट लिख रखा है। शरद बाबू की इस पहल पर ही पोद्दार जी ने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट प्रेमचंद लिखना शुरू कर दिया। इस प्रकार वे प्रेमचंद से उपन्यास सम्राट प्रेमचंद हो गए।
और प्रेमचंद से वे मुंशी प्रेमचंद कैसे बने? अध्यापक होने की वजह से या कायस्थ जाति के होने की वजह से?
नहीं, शायद ये दोनों ही वजहें नहीं थीं। यह सही है कि उस जमाने में अध्यापकों को प्रायः मुंशी कहकर पुकारा जाता था। यह भी सही है कि मुंशी शब्द सम्मान सूचक था और कायस्थों के नाम से पहले सम्मान के रूप में मुंशी शब्द लगा दिया जाता था। लेकिन प्रेमचंद जी के पुत्र और प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय बताते हैं कि प्रेमचंद जी ने स्वयं अपने नाम के आगे मुंशी शब्द कभी नहीं लगाया। यही नहीं, प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी ने भी अपनी पुस्तक प्रेमचंद घर में लिखते हुए प्रेमचंद जी के लिए कहीं भी मुंशी शब्द का प्रयोग नहीं किया।
प्रेमचंद जी के प्रकाशकों ने तो उनकी कृतियों पर कहीं न कहीं उनके नाम के आगे मुंशी शब्द लगाया होगा?
नहीं, किसी भी प्रकाशक ने ऐसा नहीं किया है।
तब फिर मुंशी शब्द उनके नाम के आगे जुड़ा कैसे?
बात ऐसी है कि हंस नामक पत्रिका में प्रेमचंद जी के सह संपादक कन्हैयालाल मुंशी हुआ करते थे। लगता है कि उनका उपनाम मुंशी ही छपते छपते प्रेमचंद जी के साथ जुड़ गया, क्योंकि हंस की कुछ पुरानी प्रतियों में संपादक के नामों की जगह कन्हैयालाल मुंशी के नाम को छूटा करते हुए केवल मुंशी और उसके बाद एक अर्धविराम लगाकर प्रेमचंद जी का नाम छापा जाता था। लगता है धीरे धीरे लोग उस अर्धविराम को भूल गए और प्रेमचंद को ही मुंशी प्रेमचंद लिखने लगे।
रेवती जी, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के नाम की रोचक कहानी सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद शंभू जी।
अभ्यास 3 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 4 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 4 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 4, प्रश्न 14-19। भारत की युवा चुनौती विषय पर लेखक और समाजशास्त्री चिरंतन धनवा के विचारों को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये विचार आपको दो बार सुनाए जाएंगे।
नमस्कार, मैं हूं चिरंतन धनवा। भारत के युवा की तस्वीर इकहरी नहीं है, वह एक तरह का कोलाज है जिसमें खेती किसानी छोड़कर हर छोटे बड़े अवसर के लिए हाथ पैर मारता गांव का युवा भी है तो अमेरिका और यूरोप के सपने देखता महानगरीय युवा भी। इन दोनों छोरों के बीच छोटे शहरों और कस्बों का वह युवा भी है जो आसमान छूते सपनों और बराबर घटते अवसरों के बीच पिस रहा है और अपने पैर टिकाने के संघर्ष में जुटा है। इन सब में कई बातें एक जैसी हैं। ये सभी सपनों और उम्मीदों से भरपूर हैं, महत्वाकांक्षी हैं, बेचैन हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं, कुछ नया और अलग करना चाहते हैं। लेकिन इनमें आपस में कुछ फर्क भी है। इनमें से बहुत कम युवाओं को ही वह उच्च शिक्षा मिल पा रही है जो बड़े अवसरों के रास्ते खुलती है। लेकिन जिन युवाओं को यह उच्च शिक्षा मिल भी रही है उन्हें भी यह किसी काम का नहीं बना पा रही है। योजना आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अधिकतर स्नातक रोजगार के लायक नहीं है, यानी उनके पास कोई कौशल और दक्षता नहीं है। यह हाल तब है जबकि देश में कॉलेज जाने की उम्र के युवाओं में से केवल 15% को ही महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में दाखिला मिल पाता है। याद रहे, भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है, जहां की आधी आबादी की औसत आयु 25 वर्ष से कम और लगभग 70% आबादी की औसत आयु 35 वर्ष से कम है। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक जिस किसी देश की आबादी में युवाओं की संख्या आधी से ज्यादा पहुंच जाती है, वह देश तेजी से आर्थिक तरक्की करता है। शर्त केवल यह है कि वह देश उन युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक कामों में लगाने के लिए उपयुक्त नीतियों के साथ तैयार हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश की यही युवा शक्ति सामाजिक उथल पुथल और अराजकता का कारण भी बन सकती है। पश्चिमी एशिया के देशों में जारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल का उदाहरण सबके सामने है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय युवा में बहुत धैर्य है और विपरीत परिस्थितियों में खड़ा रहने का हौसला भी है, लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि वह बहुत बेचैन है। वह और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है और वह एक बेहतर कल की मांग कर रहा है। अन्ना हजारे के आंदोलन में भाग लेने बड़ी संख्या में निकले युवाओं में यह बेचैनी और गुस्सा साफ देखा जा सकता है। हकीकत यह है कि आज का युवा संघर्ष का अपना नया मुहावरा गढ़ रहा है। वह रूढ़ियों को तोड़ रहा है, बंधनों से बाहर निकल रहा है और आजाद विचारों वाला है। उसकी आजादी और नए ख्यालों से बहुतों को डर लग रहा है।
अभ्यास चार के ये विचार अब आप फिर से सुनेंगे।
नमस्कार, मैं हूं चिरंतन धनवा। भारत के युवा की तस्वीर इकहरी नहीं है, वह एक तरह का कोलाज है जिसमें खेती किसानी छोड़कर हर छोटे बड़े अवसर के लिए हाथ पैर मारता गांव का युवा भी है तो अमेरिका और यूरोप के सपने देखता महानगरीय युवा भी। इन दोनों छोरों के बीच छोटे शहरों और कस्बों का वह युवा भी है जो आसमान छूते सपनों और बराबर घटते अवसरों के बीच पिस रहा है और अपने पैर टिकाने के संघर्ष में जुटा है। इन सब में कई बातें एक जैसी हैं। ये सभी सपनों और उम्मीदों से भरपूर हैं, महत्वाकांक्षी हैं, बेचैन हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं, कुछ नया और अलग करना चाहते हैं। लेकिन इनमें आपस में कुछ फर्क भी है। इनमें से बहुत कम युवाओं को ही वह उच्च शिक्षा मिल पा रही है जो बड़े अवसरों के रास्ते खुलती है। लेकिन जिन युवाओं को यह उच्च शिक्षा मिल भी रही है, उन्हें भी यह किसी काम का नहीं बना पा रही है। योजना आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अधिकतर स्नातक रोजगार के लायक नहीं हैं, यानी उनके पास कोई कौशल और दक्षता नहीं है। यह हाल तब है जबकि देश में कॉलेज जाने की उम्र के युवाओं में से केवल 15% को ही महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में दाखिला मिल पाता है। याद रहे, भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है, जहां की आधी आबादी की औसत आयु 25 वर्ष से कम और लगभग 70% आबादी की औसत आयु 35 वर्ष से कम है। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक जिस किसी देश की आबादी में युवाओं की संख्या आधी से ज्यादा पहुंच जाती है, वह देश तेजी से आर्थिक तरक्की करता है। शर्त केवल यह है कि वह देश उन युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक कामों में लगाने के लिए उपयुक्त नीतियों के साथ तैयार हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश की यही युवा शक्ति सामाजिक उथल-पुथल और अराजकता का कारण भी बन सकती है। पश्चिमी एशिया के देशों में जारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल का उदाहरण सबके सामने है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय युवा में बहुत धैर्य है और विपरीत परिस्थितियों में खड़ा रहने का हौसला भी है, लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि वह बहुत बेचैन है। वह और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है और वह एक बेहतर कल की मांग कर रहा है। अन्ना हजारे के आंदोलन में भाग लेने बड़ी संख्या में निकले युवाओं में यह बेचैनी और गुस्सा साफ देखा जा सकता है। हकीकत यह है कि आज का युवा संघर्ष का अपना नया मुहावरा गढ़ रहा है। वह रूढ़ियों को तोड़ रहा है, बंधनों से बाहर निकल रहा है और आजाद विचारों वाला है। उसकी आजादी और नए ख्यालों से बहुतों को डर लग रहा है।
अभ्यास चार और यह परीक्षा समाप्त हुई।
दिस इज द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन।